اب اگلی آیت میں انہی کو بیس بنا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ جنرل احکامات دیے. میں کوشش کروں گی کہ ایک دفعہ آیتوں کی حد تک پڑھ لیں, پھر جو اس کے اندر ایشوز مسئلے مسائل ہوں گے ہم اس کو الگ سے الگ کرتے رہیں گے. آیت نمبر 32, یا نساء النبی لستنک احد من النساء, اے نبی کی بیویوں تمام عورتوں کی مانند نہیں ہو, یعنی تمہاری حیثیت قیامت تک امت کی ماؤں کی ہے, تم ان کے لیے رول ماڈل ہو, اسوہ حسنہ ہو, اس لیے تم اپنے آپ کو ویسا نہ سمجھو. اس آیت کے اوپر بھی میں اکثر اپنے آپ کو یہ کہتی ہوں کہ وہاں یا نساء النبی ہی تھا اور یہاں یا اہل القرآن ہے. اے قرآن والی عورتوں, اے اللہ کے دین سے تعلق جوڑنے والی عورتوں, اب تم آرڈنری وومن نہیں رہی. جیسے کوئی دنیا میں آرٹ کے نام پر کام کرنے والوں کو کوئی کہتا ہے بھائی تم تو آرٹسٹ ہو, سب عورتیں تو سر عام شاپنگ کرنے جا سکتی ہیں, تم نہیں کر سکتی, برقع پہن کے چلی جاؤ ورنہ لوگوں نے آٹوگراف لینے آ جانا ہے اور تمہیں لوگوں نے دیکھ کر شاپنگ چھوڑ دینی ہے. فرق پڑ جاتا ہے نا دنیا کی چیزوں میں بھی, اسی طرح دین کی روشنی میں بھی کہہ دیا. شرط کیا ہے؟ نمبر ایک, ان تقیتن, اگر تم تقوی اختیار کرو. آپ اگر اس آیت کو میں ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھنا چاہوں گی, آپ پیچھے سے پھر دیکھیے گا, یا نساء نبی لستن کاحد من النساء ان تقیتن, یہاں روکیں گے تو معنی کیا بنا, اے نبی کی اور بیویو تم عام عورتیں نہیں ہو اگر تم تقوی اختیار کرو. بات سمجھ آئی؟ یعنی صرف نبی کی بیوی ہونا از ناٹ اے میٹر, وہ تو حضرت لوط کی بیوی بھی تھی, حضرت نوح کی بیوی بھی تھی, ہم سورۃ تحریم میں پڑھیں گے 28 پارے کے آخری سورت میں, ان کو تو فائدہ نہیں ہوا نبی کی بیوی ہونا کیونکہ انہیں تقیتن کی شرط نہیں تھی, تقوی نہیں تھا. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی, تقوی ہے تو تمہارا مقام ہے اور تقوی نہیں ہے تو تمہارا مقام نہیں. اور اگر آپ اس کو اب دوسری طرح دیکھیں, رک جائیں کاحد من النساء پہ جیسے ہم شروع میں رکے, تو بات کیسے ہوگی, اے نبی کی بیویو تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو, ختم. لیکن کیا تم میں خاص چیز دیکھنی ہے, ان تقیتن فلا تحدان بالقول, اگر تم تقوی اختیار کرو تو گفتگو میں نرمی پیدا نہ کرو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترتیب نزول کے اعتبار سے یہاں سے پردے کے احکامات نازل ہو رہے ہیں. پیچھے ذکر کیا ہے کہ یہ سورت پہلے نازل ہوئی تھی سورت نور سے. اسلام جو ہے وہ کس طریقے سے انسان کو بتاتا ہے کہ جب پردے کی آیتیں اتری تو سب سے پہلے یہ حکم آیا تھا کہ مردوں سے نرم لہجوں سے بات نہ کرو. یہ پہلا حکم تھا ترتیب کے اعتبار سے, کیونکہ یہاں سے راستہ کھلتا ہے. آگے وجہ بتائیے. پھر دوسرا حکم جو ترتیب میں آیا تھا وہ آیا تھا غصے بسر کا, یغص من ابصارہم والی بات ہے, ٹھیک ہے. پھر تیسرا حکم اوپر آیا تھا پردے کا جو سورت نور میں پڑھے ہوئے, اور آخری حکم ابھی آج بھی اس پہ بات نہیں ہے, سورت کے آخر میں ایک بار پھر یہ حکم آنے والا ہے کہ یتنین علیہن من جلابیبہن. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پردے کا آغاز گفتگو کے انداز سے ہوتا ہے, پھر آہستہ جائیں آگے تو نظروں کے جھکانے سے اس میں اور پختگی آتی ہے, پھر اس کے بعد انسان اپنے لباس اور حجاب کے معاملے میں بہت سنجیدہ ہو جاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ لباس جو ہے وہ جلباب کی صورت میں سر سے پاؤں تک ادھر آ جاتا ہے. لیکن یہاں خاص طور پہ بات ہوئی ہے مردوں سے بات کرنے میں نرم بات نہ کرو. دیکھیے پہلی بات ہے کہ اگر عورت کو یہ کہہ دیا جاتا کہ بات ہی نہ کرو تو سیدھا سے حکم کیا آنا چاہیے تھا کہ عورتوں مردوں سے بات نہ کرو, دیٹس اٹ, ختم. اب یہ ہے وہ آیت جس کے اوپر عموماً عورت کی آواز کے پردے کی باتیں ہوتی ہیں. تو پہلی بات ہے کہ عورت کی آواز اپنی ذات میں پردہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ایک دین فطرت ہے, وہ باتیں جس پہ عمل ہو ہی نہ سکے اس کا حکم نہیں دے سکتا. دنیا کا نظام چل ہی نہیں سکتا اگر عورت کی آواز مرد نہ سنے, ورنہ تو لازم ہوتا کہ ہر عورت کے ساتھ ہر وقت کوئی نہ کوئی محرم ہوتا. گھر میں بھی عورت اکیلی نہ ہوتی, کیونکہ آپ دیکھیں اب گھر میں ٹیلی فون کی بیل بجتی, اب آپ کے پاس مرد ہی نہیں, آپ کیسے فون اٹھا سکتی ہیں؟ انٹر کام باہر بجتا, ڈرائیور کوئی بات پوچھتا, خان صاحب آپ سے کچھ پوچھتا, آپ کیسے بات کریں گے؟ میاں کو فون کریں گی کہ آپ ذرا ڈرائیور کو کہہ دیجئے کہ چابی اندر سے آ کے لے جائے, آپ ذرا خان صاحب کو کہہ دیں آج آلو گوشت بنا لے, ممکن ہی نہیں ہے, اٹس ناٹ پاسبل. اسلام ایسے تکلفات میں نہیں ڈالتا. ہمارے ہاں اس موضوع میں دو انتہائی رویے ہیں. پہلی انتہا کیا ہے کہ مطلقاً عورت کی آواز پردہ ہے, حالانکہ ہم دیکھیں گے کہ ان آیات پر اسلام نے کیسے عمل کیا. صحابیات جو تھیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور آپ کی ازواج بھی, ان کا کیا تعلق تھا کہ وہ مردوں سے ضرورت پڑنے پر بات کرتی تھی. جس بات سے روکا جا رہا ہے نا وہ بلا وجہ کی مردوں سے بے تکلفی ہے. یعنی کچھ پابندیاں ہیں, اس کو نوٹ کر لیجئے. میں کوشش کروں گی کہ یہ آیتیں آپ کو کوشچن آنسرز کی صورت میں لکھاؤں تاکہ یس نو یس نو ہمارے سامنے آ جائے تو بات زیادہ ہو جائے گی واضح. پہلی بات ہے کہ جب اسلام آیا تھا نا تو عورت کو گری پڑی مخلوق سمجھتے تھے. عورت صرف ایک سیکس آبجیکٹ تھی, شہوت رانی تھی. عورت اور مرد کے درمیان تعلق میں حیوانی پہلو کو اہمیت دی جاتی تھی. یعنی عورت کو سوسائٹی کا کوئی برین نہیں سمجھا جاتا تھا کہ کوئی انٹلیکچوئل ہے. اسی لیے جنگوں میں یا مشوروں میں, ایسی چیزوں میں جہاں انٹیلیجنسی کام کرتی ہے اس میں عورتوں کو شامل نہیں کرتے تھے. جنگوں میں لے بھی جاتے تھے نا تو صرف ناچنے گانے کے لیے اور خدمت کے لیے لیتے تھے. اسلام نے آنے کے بعد عورت کو کیا مقام دیا؟ نمبر ایک, عورت کو عزت کا مقام دیا. اسلام نے عورت کو نسل انسانی کی تربیت کا ذریعہ بنایا, اور اسلام نے مرد اور عورت کے تعلق میں حیوانی سے بڑھ کر انسانی پہلو کو اہمیت دی. اسلام نے عورت کی عقل کو تسلیم کیا. عورت عقل مند ہو سکتی ہے, عورت مشورہ دے سکتی ہے, عورت فیصلہ کر سکتی ہے, عورت ڈیسیزنز کی پاور مردوں سے اچھی لے سکتی ہے. لہذا اسلام نے عورت کو اٹھایا. اب جب عورت کو اٹھایا تو ظاہر ہے کہ عورت کو کچھ اختیارات بھی دیے. ماں کے ہاتھ میں بچہ دے دیا, تربیت کا سارا کام. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ روحانی پاکیزگی اتنی زیادہ پیدا کی معاشرے میں کہ عریانیت اور بے راہ روی سے معاشرے کو پاک کر دیا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی یہاں مثالیں لا کر ہمیں بتا دیا کہ جب ایک با عصمت عورت, یعنی جس کے اندر تقویٰ ہے, تو وہ مردوں سے بات کرتی ہے تو وہ بات کے اندر وہ لوچ نہیں پیدا کرتی کہ جس کو سن کر شریف آدمی بھی گھبرا جائے. اور آپ یہ مانے کہ نہ مانے, جب عورتیں لچک لچک کے اور ادائیں دکھا کے بات کرتی ہیں نا تو مرد جو شریف ہوتے ہیں نا وہ انکمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں. نقصان کیا ہوگا؟ اس کا وجہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آیت کے اگلے حصے میں بتا دی کہ فلا تحدان بالقولی, تم اپنی گفتگو میں نرمی نہ پیدا کرو, ورنہ کیا ہوگا؟ فیتم الذی فی قلبہ مرض, وہ شخص جس کے دل میں روگ ہے وہ کسی لالچ میں پڑ جائے گا. منافق اسی معاشرے میں رہتے تھے جو کوئی موقع بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. حضرت عائشہ پر بہتان کا معاملہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا کیئرفل کر دیا کہ عورت کی آواز میں نرمی اور لوچ ہوگی تو گندی ذہنیت کا حامل شخص اپنے دل میں کوئی منفی آرزو پیدا کر لے گا. لہذا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, بات میں معروف انداز پیدا کرو, نرمی نزاکت کی جھلک نہ ہو اور نہ بہت ترش بات کرو نہ تلخ بات کرو, معقول بات کرو, معروف انداز میں بات کرو, ضرورت کی بات کرو, با مقصد بات کرو, گپ شپ نہ کرو, نیکی کی بات کرو. بات کرنے میں اچھے انداز کیا ہو سکتے ہیں؟ کہ ایک انسان کام کی بات کرے. آپ دیکھیے, لکھیے ذرا چند چیزیں. نمبر ایک, لہجہ ایسا نرم نہ ہو کہ دوسرا غلط انویٹیشن سمجھ لے, اور نہ اتنا روکھا پیکا ہو کہ بد اخلاق سمجھ لے. گویا کہ گفتگو اخلاق کے دائرے میں رہے. پھر کالم معروف میں بات کے منکر بات نہ ہو, فیشن کی باتیں, فلموں کی باتیں, غیبتیں, چگلیاں, گوسپ, ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بھابیز اور انکلز اور آنٹیز اور ایک محفل سجی بھی اور ایک کیلو قال ہو رہا ہے, یہ نہ ہو. پھر اسی طرح اس میں گپ شپ نہیں آتی. پھر معروف بات میں مذاق بھی نہیں آتا, یعنی آپ غیر محرم سے مذاق نہیں کر سکتے. ایک خاص حد تک مزاح بھی نہیں کر سکتے, ایسا مذاق کہ جس سے آپ اکیلے لطف اندوز ہو رہے ہیں دو تین لوگ بیٹھ کر, یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے. پھر اسی طرح معروف بات غیر سنجیدہ نہیں ہوتی. معروف بات کا موضوع بے راہ روی کی طرف مائل کرنے والا نہیں ہوتا. آج کے ہمارے جو گھر ہیں نا, یوں اس دور کے گھروں سے بہت فرق ہے. چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में बाज़ दफ़ा कोई बदी साइड पे उनको कर दिया जाता था, वो थी और बात उनको थी। कभी कभी बीच में बात में आते हुए जाते हुए सलाम दुआ करना पड़ता था, अल्लाह के नबी की बीवियों को इसकी इजाज़त है। औरत क्या करे, कब तक करे, कितना करे? देखिए सिंपल सी बात है कि जो बात आप मारूफ तरीके से किसी के सामने कर सकते हैं, जिसके अंदर किसी दूसरे को आपके बारे में गलत सोचने का ख्याल भी ना पैदा हो। क्योंकि आप देखिए कि नबी सल्लम के घराने से दीन शुरू हो रहा था ना, तो लोगों ने कह देना था कि अल्लाह के नबी की बीवियां हंस हंस के बातें करती हैं ना, तो औरतें भी कर सकती हैं, और औरतें मर्दों को पढ़ा भी सकती हैं और क्या करती हैं। अब इसमें जो एक्सट्रीम है ना, एक तरफ तो ये कह दिया कि बिल्कुल नहीं बात कर सकते, नेवर, करनी नहीं, बिल्कुल नहीं करनी। हालांकि ऐसे लोग दिन रात फोनों पे बातें करते हैं, दफ्तरों में जाते हैं, बैंकों में जाते हैं, वहां औरतें होती हैं। लेकिन जहां बात खास तौर पे फिर दीन की आती है, औरत के पढ़ने पढ़ाने की बात आती है, या औरत की आवाज बाहर जाने की आती है, तो वो इतना सख्त रवैया अख्तियार करते हैं कि अगर कोई कहे तो कहते हैं गाना तो और चीज है ना, कुरान तो नहीं ना औरत का सुन सकते। और एक दूसरी इंतहा के है कि बिला वजह मर्दों से बेतकल्फी है, इनवाइटिंग वॉइस है। बाज़ औरतें बाजारों में जाकर, अल्लाह माफ करे, यहाँ तो बारगेनिंग होती नहीं है ना, लेकिन अल्लाह माफ करे जो हमारे मुल्कों में बाज दफा दो दो चार चार दस दस रुपए काम कराने के लिए अदाएं दिखाती हैं। भाई जान लचकती, कर देना काम, ये हो गया, यानी हया बेचकर चीजें खरीदती हैं और अपने अंदाज और आवाज टेढ़े कर कर चीजें लेके आती हैं। टेलीफोन की कॉल्स देखिए, आज इसकी ये खराबी कि बास सफा आवाज बात फोन करने की ऐसी होती है, फोन पे अफेयर्स हो जाते हैं, बोलने का अंदाज इतना मीठा होता है, वो शौहर जो पास बैठा है उससे बात कैसे की जाती है, और उसी का दोस्त का फोन आ जाए तो क्या हाल है भाई जान, आप आए नहीं, किधर है, क्या भाई आपको क्या तकलीफ है, नहीं आए तो आपको उनसे क्या लेना देना। बात दफा शौहर के दोस्त है और बात लंबी भाभी से होती है, भाभी भाभी कर करके बातें करती, कतन इसकी इजाजत नहीं। फिर कमर्शियल कॉल्स ने और माहौल को खराब कर दिया, वो कॉल करती हैं कोई चीज बेचने के लिए, वो आवाज ही इतनी प्यारी लग गई कि पता चला कि दिल बेच के आ गए। और पांच दफा आप देखिए रॉन्ग नंबर मिलता है, और रॉन्ग नंबर इतना मिला कि अफेयर चल गया। आप पढ़ के देखिए, ऐसे ऐसे इश्यूज है कि आजकल टेलीफोन के जरिए से जो बेहरा रवि होती है। इसमें मैंने एक पूरा लेक्चर दिया था जिसमें सिर्फ टेलीफोन का मिस यूज था, और यंग बच्चियों के साथ एक कहानियां भी चंद शेयर की थी कि टेलीफोन या ये जो चैटिंग, और आज के दौर में तो टेलीफोन कहना भी मुझे अब बैकवर्डनेस ही लगती है। आप तो चिट चैट है, आज तो वाइबर है, आज तो टेक्सटिंग है, आज तो स्काइप कॉल्स हैं, और आज तो हर वो अच्छी चीज जिसके अंदर अच्छा काम भी हो सकता था उसको गलत लेके पेश किया जाता है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अगर आप चाहते हैं ना कि दूसरे मर्दों को आपसे बात करने में जरूरत ना, तो उसका आसान सा तरीका क्या, टेलीफोन उठाएं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब बिलीव करें कि जब आपका आवाज स्पाट, अंदाज सीधा और सलाम से बात करेंगे ना, अगला बंदा बात ही नहीं गलत करेगा, उल्टी सीधी वो बात नहीं करेगा। बाज लोग किससे बात करनी थी, आपसे ही करनी थी, वे आपसे क्यों करनी थी। फिर बाज दुकानदार भी फायदा उठाते हैं, है तो ये 50 की, आपके लिए 40 की, भाई आपके लिए 40 की क्यों, मैं आपकी क्या लगती हूँ। इन सब चीजों से बात फर्क करनी चाहिए। फिर इसी तरह आप देखिए कजन्स, ये तो कजन्स है, ये मामू का बेटा, ये चचा का बेटा, ये तो बराबर के। बाज लोग उम्र में छोटी बच्चियों के पर्दे पे इतने परेशान नहीं होते जो अपने बराबर के लोगों के पर्दे से परेशान होने लगते हैं कि ये क्यों बेगानगी हो गई इनकी, उनके साथ तो हम बहुत वक्त गुजार चुके हैं, इनकी तो शादी हमारे सामने, हम तो इनके घर रहे, ये तो हमारे घर थी, ये थी वो थी। तो अल्लाह ताला ऐसी चीजों से बचाने को कहता है। और यहां देखिए आवाज से आगे पर्दे की बातें, जिस्म की दिखाने की, उभार की बातें, इतना इस्लाम इन चीजों से रोकता है कि इंसान अगर इन चीजों के ऊपर अपने आप को ना बांधे तो बात नहीं होगी। अब बाकी रहेगी बात कि क्या इसके अंदर औरतों को कोई गुंजाइश है, क्या सहाबियात के पास इसका मौजूद था। तो सबसे पहले तो इसमें हजरत आयशा की मिसाल ले लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हजरत आयशा की शादी में एक बहुत बड़ी हिकमत क्या थी कि इंसान का एक नेचुरल लाइफ स्पैम होता है ना 60-70 साल के, हम सबका। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 ईयर्स थी जब आपको नबूवत मिली, 40 से आगे रह गए समझ लें कि 25 साल ही रह गए ना आपके पास। अगर अल्लाह के नबी की हर शादी आपकी हम उम्र बीवी के साथ होती, बल्कि जैसे हमारे यहाँ मारूफ है 2-4 साल छोटी ही होती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां जो आपके साथ थोड़ा अरसा रहती, थोड़ा अरसा आपके बाद 2-2, 4-4 साल बाद वो भी फौत होने लग जाती, ऐसी है ना। अमूमी तो यही देखा ना, मर्द आज 65 का हो गया चलो उसका वक्त आ गया तो बीवी 4 साल बाद हो गई, उसका आ गया दूसरी 3 साल बाद आ गया, आगे खत्म हो जाती बात, तो दिन खत्म होता। हजरत आयशा गोया के एक चाइल्डहुड नबी सल्लम के घर गुजार चुकी थी। नंबर एक कि बचपन से डे वन से जिसकी तरबियत करनी है ना वो आयशा थी। बीवियां तो अपने घर से इतना सीख सूख के आती हैं, अपने माँ बाप के घर में चाहे खुश ना हो, ससुराल के घर में जाके कहेंगी जो हमारे माँ बाप का तरीका था वो तो किसी का भी नहीं हो सकता। पीछे भी बताया था कि शादी के बाद मर्द अमूमन अपने मैके से दूर हो जाते हैं जहनी तौर पे भी, और लड़कियां जहनी तौर पे करीब हो जाती हैं, पहले माँ से बनती नहीं है फिर बाद में हर बात में माँ का नाम लेती हैं। एक फितरी सी बात है, ये एक ऑटोमेशन चलता है हमारे जहनों में। अब आप देखिए कि जब ये सारे हालात हुए कि हजरत आयशा नबी सल्लम की वफात के वक्त तकरीबन 18 साल की थी, 18 ईयर्स, टीन एज है ना आपकी बच्ची, टीन एज में एक बच्ची बेवा हो गई, और उससे पहले नबी की माइयत में 10 साल तकरीबन जो गुजारे हैं उसमें आपसे वो सारा इल्म भी अखज कर लिया, कि आज मुफस्सरीन या मुहद्दसीन कहते हैं आधा इल्म, बास कहते हैं 2/3 इल्म शरीयत का हजरत आयशा से इस्लाम को मिला। नबी सल्लम की वफात के बाद हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक टीचर के फराइज अंजाम देती हैं, फिर घरेलू जिंदगी के मसाइल, फिर निजी जिंदगी के मसाइल, इस्लाम हक बयान करने से नहीं शर्माता, शौहर बीवी की जाती जिंदगी, मर्द घर में कैसे रहे किसको बताओगा, आपकी बीवियों को बताता ना, अल्लाह ताला ने नबी की बीवियों से ये काम लिया। हजरत आयशा बड़े बड़े सहाबा को पढ़ाती थी, और पढ़ाती कैसे थी, आमने सामने बुरका पहन के, ऐसा नहीं, बैठते हिजाब में थे, पर्दे में थे, ये आगे आते आएंगी कि जब कुछ मांगो तो हिजाब से मांगो, तो सरासर आवाज का पर्दा नहीं है, बात का पर्दा है, किस बात को करना है, गंदी बात तो नहीं कर रही, खटिया बातें तो नहीं करनी, तो ये सारी करके यहां बता दिया कि ये तंग नजरी की बात है कि अगर ये कह दिया जाए कि औरत नहीं पढ़ती, और रहेगी बात कि क्या औरत मर्द को पढ़ा सकती है। देखिए आम हालात में फेस टू फेस बैठ के, जैसे मैं और आप इस वक्त बैठ के पढ़ रहे हैं कि चले जी एक साइड पे मर्दों की लाइनें लग जाएं और औरतें पर्दा कर लें, मैं जाती तौर पर इसको कभी भी पसंद ना करूं अपने लिए। अब रहेगी बात आखिरी जो रह गई है कि एक औरत पढ़ा रही है, पढ़ा दिया, आपको पढ़ाया किसी ने, मुझे किसी ने पढ़ाया, हमने पढ़ा, अब इस सब की रिकॉर्डिंग होती है ना। अब मैं आपको पढ़ा रही हूं, मुझे आपसे मोहब्बत महसूस हो रही है ना, क्योंकि ये कभी हो ही नहीं सकता कि पढ़ाने वाले को अपने एक एक तालिब इल्म से प्यार ना हो। ये तो ऐसे ही है जैसे कोई आपके बच्चा माँ को कहता है कि आपको मेरे से नहीं प्यार बाकियों से बहुत है, ये तब पता चलता है जब खुद बंदा उस्ताद बनता है। हर शागिर्द ये कहते हैं मेरे से नहीं इनको प्यार, डांटते ही बहुत हैं, गुस्सा ही बहुत करते हैं, मेरे साथ तो इनको चिढ़ है, ये कच्ची बातें होती हैं, लेकिन ये एक ऐसा फैक्ट है जिसको लोग वक्त के बाद रियलाइज करते हैं। खैर एसोसिएशन हो जाती है ना, इसी तरह मैं आपको पढ़ा रही हूं तो आपके भी दिल में अगर कोई बात अच्छी लगती है तो आपको भी आएगा कि हमें इनके जरिए से बात पता चली, बस इससे ज्यादा तो हम नहीं है ना, इल्म तो पीछे है। अब ये फीलिंग्स मेरी आपके साथ है, अब ये रिकॉर्डिंग कोई जाके बाद में कहीं सुनता है, मुझे वो पता है वो कौन है, उसको पता है मैं कौन हूं, मेरे और उसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। अल्लाह का कलाम है, अगर कोई हिदायत लेने के लिए सुनता है नो प्रॉब्लम, मर्द मौजूद है मर्दों से सुनिए। आप किसी मर्द को अगर ये शक भी पड़ता है ना कि किसी औरत की आवाज में मैं कुरान या दर्स कोई मैसेज सुनता हूं तो मेरे दिल में इस औरत से मोहब्बत महसूस होती है, या मैं मैसेज को छोड़कर मैसेज देने वाली पे सोचता हूं, तो फिर तो वल्ला ही उसको बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए, कट करके बंद कर, क्योंकि वो इसमें आता है फयतमल्लज़ी फी मर्द, वो तो बीमार है बेचारा। हर मर्दों की मुख्तलिफ किस्में होती हैं, अगर वो वाकई ऐसे उसको नहीं सुनना चाहिए, फिर मर्द बहुत है माशाल्लाह, मर्दों को मर्द सिखाएं, औरतों को मर्द सिखाएं, औरतों को औरतें सिखाएं। आगे हम पढ़ेंगे कि औरतों के बहुत सारे फील्ड है, उसमें ये बात आती है कि औरतें औरतों में कंफर्टेबल फील करती हैं, तो बेस्ट कॉम्बिनेशन मेरी नजर में तो ये है कि औरतें औरतों से पढ़ें, मर्द मर्दों से पढ़ें। किसी का कमेंट बताती हूँ, इतने अच्छे माशाल्लाह स्कॉलर्स हैं हमारे सबके पास है माशाल्लाह, आप लोगों ने भी सुने होंगे, हमारे अपने उस्तादों में भी मौजूद है, हमने भी पढ़ा है, हम उनसे पढ़वाते भी अपनी क्लासेस में। अब यहाँ तो चूंकि बहुत सारे फिर मैनेजमेंट के इश्यूज चलते हैं और मुझे तो कोई पता भी नहीं शहर में कोई इस तरह का अगर अवेलेबल टीचर हो, लेकिन ऑनलाइन पे हम हेल्प लेते हैं टीचर से, लेकिन खास रूल्स होते हैं, बात करनी है उन्होंने इस्लाम से ज्यादा हालचाल भी नहीं पूछना। यहाँ तो हम आते हैं थोड़ी बात करते हैं, क्या कभी हंस भी पड़ते हैं, कभी हम जोक भी सुनाते हैं, कतन इजाजत नहीं है। इवन हमारे रूम्स में मर्द आके कोई सुनता है, शर्त यह है कि ना वो माइक पे आ सकते हैं ना वो खुद को बता सकते हैं, हमें क्या पता अब कहाँ, यानी असल जो मसला है ना वो इंटरेक्शन है जो मुझे समझ आता है, तो इसके लिए बंदे को बहुत फिक्र करनी चाहिए। लेकिन हमने अपनी क्लासों में बुखारी पढ़वाई थी मेरे टीचर से, अच्छी पढ़ाई उन्होंने, बहुत अच्छी पढ़ाई, जाहिर है कि उनका अंदाज फर्क होगा, अब मैंने इधर आपको पढ़ानी शुरू की तो वो रिकॉर्डिंग्स हमने कहीं भेजी, तो जो साथियों के थे ना क्यूमेंट्स, उसमें मुझे एक पढ़ के बड़ी हंसी आई, तो उन्होंने जो कमेंट दिया उसको तो छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक्चुअली वी आर ट्यून इन विद फीमेल वॉइस। पीछे उन्होंने क्या लिखा होगा आप खुद ही समझ गई होंगी कि हमें औरत की आवाज में पढ़ने की इतनी अब आदत हो गई है कि हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। फर्क होता है, ये एक फितरी सी बात है। और मर्दों को आप औरतों की दें तो बाज मर्द नहीं फील करते कंफर्टेबल, वो कहते हैं ये औरतें, इन्होंने कोई आज तक अच्छा काम किया जो ये अच्छा पढ़ा भी लेंगी। तो भाई आप उनसे सीखिए, आप इनसे सीखिए, लेकिन फितना ना बनाए, मसला नहीं बनाने चाहिए। कौले मारूफ होगी तो बात हो जाएगी, और इसके ऊपर अल्लाह ताला ने हर एक को सोचने का मौका दे दिया। यही असल में मेरे और आपके लिए इसमें एक क्वेश्चन है कि हम अपने आप को बचा के रखें, एहतियात से रखें। रह गई बातें फिर भी करेंगे लोग, मसले होंगे, ये सोसाइटी कभी आइडियल नहीं है। और ये भी याद रखिए कि नबी सल्लम का दौर, जहां ये आयतें नाजिल हो रही हैं, वो आइडियल सोसाइटी थी, तब बीमार दिल वाले लोग थोड़े थे। आज हो सकता है कि कोई ऐसा मसला आए तो बहुत ही सादा मसाइल भी पैदा हो जाएं। और हैरत की बात है कि कभी कम ही लोगों से आपने सुना होगा कि औरतों के गाने क्यों चलाते हो फिल्मों में, बंद कर दो, ये एडवर्टाइजमेंट क्यों है, ये मॉडलिंग क्यों करती हैं। लेकिन जहां दीन की बात आती है तो लोग परेशान होते हैं। कुछ पाबंदियां अल्लाह ताला ने खुद औरत पे लगा दी, मसलन औरत अजान नहीं दे सकती। क्यों? आप देखेंगे अजान में भी एक किस्म की मेलोडी है, पसंदीदा नहीं है, और औरत दे ही नहीं सकती। औरत इमामत नहीं करा सकती मर्दों को, औरतें मिलके आपस में जमात से नमाज पढ़ सकती हैं अगर एक ही सफ में, लेकिन औरत इमाम नहीं बन सकती। औरत को इस तरह पब्लिसाइज करके बाहर जाके अपनी आवाजें नहीं रखनी, क्योंकि बहरहाल औरत के अंदर अट्रैक्शन होती है। औरत की आवाज छोड़िए, औरत की तो जूती की आवाज में भी कशिश है, उसके तो पाँव के बजने वाले जेवर में भी कशिश है। तो बहरहाल ये सारे इश्यूज आगे आएंगे इसी के आगे, लेकिन यहाँ इतनी बात से हमें इतनी बात समझ आ गई। अगर इस मौजू पे आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्या समझे हैं? देखिए बाहर कभी भी कोई बात जाके अधूरी ना पेश किया करें प्लीज, इसलिए कि ये बहुत ज्यादा जिम्मेदारी की बात है। एहतियात का तकाजा ये है कि खामोश रहें। जिसको कोई बात सीखनी समझनी होती है उसको पूरी आयत पढ़ के समझाएंगे तो बात समझ आएगी, वरना थोड़ी सी बात समझ नहीं आती। ये कहती है कि देन इट इज नॉट परमिटेड देन टू लर्न फ्रॉम अ मैन, बिल्कुल अलाउड है मर्दों से। अब ये ऑपोजिट है ना, मर्द की आवाज का तो कोई पर्दा ही नहीं है ना, मर्द से तो आप कभी भी ले सकते हैं, मर्द पढ़ा भी सकते हैं। और जिस तरह हजरत आयशा से सहाबा सीखते थे, इस तरह सहाबा से भी सहाबियात ने सीखा है। फर्क उसमें सिर्फ वही है कि फिर उनकी इंट्रेक्शन को देखा जाएगा। इसमें मुख्तलिफ बातें हैं, बाज कहते हैं कि मर्द मर्दों में आके अगर बैठे और औरतें खुद को छुपाए हुए हैं तो पढ़ा सकता है, बाज कहते हैं इसकी इजाजत नहीं है। वो कहते हैं कि मर्द पढ़ाएगा लेकिन औरत और मर्द के बीच में पार्टीशन होगी, और एहतियात का तकाजा तो यही है। लेकिन मैं इसको यही कहती हूँ कि हालात जगह, मिसाल एक बिग हॉल है, अब आप सोचिए अगर औरतें भी हैं मर्द भी हैं, अगर औरतें भी, जैसे अब ये कॉन्फ्रेंसिस होती हैं, कन्वेंशन होते हैं, इवेंट्स, अब मेल स्पीकर है वो इतना दूर स्टेज पे है, तो अगर सिस्टर्स पिछली सफों में यार मर्द आ गए हैं तो इस ओके इंशाल्लाह नो प्रॉब्लम है। लेकिन अब आप एक बिल्कुल इतने छोटे से रूम में कि जैसे अब ये मेरा टेबल है और ये समझे कि ये जहां आपके ये डेस्क की सिर्फ चार लगे हुए, इतनी सी जगह, तो यहाँ औरतें बैठे तो आई थिंक सो कि ना मर्द कंफर्टेबल फील करेगा ना औरतें। तो क्लोज सर्कट में करना चाहिए, लेकिन जितना भी आप पर्दे का ख्याल रखेंगे उतना इंशाल्लाह फायदा होगा। आप कहेंगे ये पॉसिबल क्या है? मैं खुद आपको एक मदरसे का बता सकती हूँ कि वहां अल्हम्दुलिल्लाह 98% टीचर मेल है, और है ही लड़की ही है ज्यादा उस मदरसे में, लड़कों का हिस्सा अलग है लड़कियों का। मैंने खुद वहां जाके पढ़ के देखा है उन्होंने क्या किया होता है। और इवन वो तजवीद सिखाते हैं इमाम साहब, जो कारी साहब है, तो वो कारी साहब अलग बैठे होते हैं। अब स्पीकर यहाँ है तो इस माइक इधर, तो स्पीकर कहीं भी हो सकता है, वो किसी और रूम में होते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया होता है कि लड़कियों के रूम में कुछ सिस्टर्स अपनी एडमिन्स बिठाई होती हैं जो कोऑर्डिनेशन कर रही होती है ना, यानी मिसाल है कि अगर कारी साहब सबक सुन रहे हैं तो जो सिस्टर पढ़ रही है तो उसके साथ उसकी ग्रुप लीडर बैठी होती है, तो वो फिर उसकी गलती नोट कर रही है, या उनके हाथों में आपस में इस तरह फोन होते हैं कि वो इस तरह से बात करती हैं, यानी एवरीथिंग इज पॉसिबल ना चाहे। लेकिन ये बातें तो बाद की बात है, पहले तो हम बाहर की दुनिया में इंट्रेक्शन देखेंगे ना। अब आप कहते हैं कि जी राउंड टेबल सेटअप हो, फैमिलीज ही बैठे हैं और सारे आपस में बैठे, तो वहां आप चुप करके कैसे? ये मसले तो लोगों को बेवकूफी के मसले दिखेंगे ना, जो लोग बाकी चीजों में केयर नहीं करते। तो हमेशा अपने लिए बेस्ट लेवल लिया करें और इंशाल्लाह उससे आपको फायदा होगा। ठीक है जी। ये कहती हैं कि विद रेफरेंस ऑफ पर्दा, लॉट ऑफ सेट ऑन द हदीस वेयर अ फीमेल इज आस्ड टू मेक अ क्लैप ऑफ इमाम्स मेक मिस्टेक व्हाइल मेन से रेफरेंस टू पर्दा रिमाइंड जी। ठीक है, ये मैं आपको इश्यू बता दूँ, आगे से भी इनकी बात पूरी पढ़ लेते हैं। आल्सो इफ अ रिकॉर्डिंग इज मेड फॉर वुमेन और चाइल्ड एंड हैज नरमी सॉफ्ट एंड हैज समथिंग लव एज वेल, वट इफ इट्स नॉट हर्ड बाई मैन। जी, इनके ये दो सवाल हैं। पहली बात यह है कि औरतों को नमाज के अंदर जब इमाम से कोई गलती हो जाए तो उस वक्त गलती निकालने की बजाय हाथ पे क्लैप करने का हुक्म है, तो इसका क्या पर्दे की आवाज़ से ताल्लुक है? और दूसरी बात यह है कि अगर एक रिकॉर्डिंग जो सिस्टर्स के साथ की गई बच्चों और औरतों के लिए, फिर बाद में उसको कोई मर्द फिर ना सुने, तो दोनों का जवाब बहुत सिंपल है। पहली बात जो आपने पूछी है कि औरत जो है वो किसी इमाम की गलती जो है वो किस तरह से निकाले, मैं आपको हदीस पढ़ के सुनाती हूँ। ये बात मैंने शेयर करनी थी, लेकिन आपके इस सवाल की रोशनी में हम इस पर अभी भी बात कर सकते हैं। अब देखिए कि जब जमात से नमाज पढ़ी जाती है तो अमूमन नमाज जो पढ़ी जा रही होती है उसमें मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं। आम हालात में तो यही होता है कि गैर महरम मर्द हैं, मतलब जो इमाम होते हैं वो औरतों के महरम नहीं होते हैं, लेकिन यही सेम हुक्म महरम के नमाज पढ़ने के साथ भी है। अगर इसका ताल्लुक आवाज के पर्दे से होता तो फिर ये कहा जाता कि मिसाल है कि शौहर नमाज पढ़ा रहे हैं, बीवी भी है, बहन भी है, माँ भी है, और दो यानी घर की जो मर्द हैं या घर के शौहर है और औरतें हैं, तो क्या फिर ऐसे वक्त में औरत ताली बजाने की बजाय उसके ऊपर क्लैप कर दे? ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर इसका अंदर ये कि इससे मसला औरत का आवाज का इश्यू नहीं है। पहली बात ये समझ लें, यह हदीस बिल्कुल सही है जो औरत के नमाज में गलती निकालने पर क्लैप है। दूसरी बात है कि अगर आप देखें तो क्लैप से मुराद अगर जो क्लैपिंग होती है वो नहीं है, बस एक आवाज निकालना है ना इस तरह से, तो अगर औरत की आवाज के अंदर कोई कशिश है तो औरत के हाथ की ताली में भी कशिश है। ये बस एक अल्लाह का हुक्म है, आप इतना समझ लें कि औरत जो है वो नमाज में इस तरह की बात करेगी जिसका अल्लाह के नबी से हमें एक साबित हो गया, दैट्स इट। बाकी रहेगी दूसरी बात है कि मर्द उसको ना सुने, तो वही जवाब है इसका जो पहले दिया गया कि अगर किसी भी मर्द को लगता है कि मेरे इस बात को सुनने से मेरे दिल में इस औरत के बारे में कोई ऐसी फीलिंग्स आ जाती हैं, एक होता है सीखने के लिए। देखिए एक बात याद रखिए, अल्लाह का दीन जो है ना ये दीन फितरत है। अगर एक कुरान पढ़ते वक्त बात नरम जुबान से औरतों को समझ आती है ना, तो मर्दों को भी वो नरम से समझ आ सकती है। बाज दफ़ा बाज स्पीकर हमारे पास इतने अच्छे माशाल्लाह आलिम हैं, लेकिन उनकी आवाज़ इतनी सख्त या इतनी ऊंची होती है कि वो बात करके गुजर भी चुके होते हैं तो वो बात दिल में पेनिट्रेट नहीं की होती। तो ये हर बंदा खुद अपने ऊपर जिम्मेदार है। मैंने जो पढ़ा मैंने आपको बता दिया कि अल्लाह ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन साथ ही कैद लगा दी कि अगर दिल में बीमारी है, मर्ज है, तो फिर ना सुने ना पढ़े। अगर किसी को खुद ये मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीज़ है कि जिसका जवाब हर मर्द खुद दे सकता है, और बहुत सारे ऐसे मर्द हैं कि जो किसी की आवाज में सुन के भी उसको भी दुआ ही देंगे, और उसके बारे में क्या आप सोचिए, किसी भी औरत की आवाज सुनकर हम उसके बारे में गलत बातें सोचने लग जाते हैं। और हर उम्र में क्या हर मर्द अपनी शादी भी कर चुका है, बच्चों वाला भी है, वो हर वक्त किसी और के मूड में हो सकता है? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये फिर हर इंसान का अपना जाती फेल है। और चूंकि आपको बताया कि जो लोग इसमें कहते हैं पर्दा वो भी अपने दलाइल रखते हैं, तो ये फिकी बातें इसमें ना तो अकीदे की कोई बात है, ना इसके अंदर फर्ज है, ना सुन्नत है, नफिल है, दी बेस्ट बेटर एंड गुड का ताल्लुक है। मैं तो ऐसे हमेशा मसलों में यही कहती हूँ, दी बेस्ट बेटर एंड गुड और ओके, ये चारों स्टेजेस रख लीजिए। ओके है, और अगर आपको महसूस होता है कि इसमें आपको लग रहा है इससे बेस्ट ऑल्टरनेट है तो बिल्कुल कर सकते हैं। और सच्ची बात है, मैं अभी ये चीज सुन रही थी, बल्कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना पर्दे की और औरतों की, तो एक रिपोर्ट थी कि उन्होंने बताया कि जो लड़के हैं ना वो ऊंचा सुनते हैं लड़कियों की निस्बत, अमेरिका का या किसी और मुल्क का था। तो उन्होंने एक एक्सपीरियंस किया कि एक क्लासरूम था तो लड़कियों को आगे बिठा दिया टीचर के करीब, लड़के पीछे बिठा दिए, तो बाद में पता क्या चला कि लड़के बातें कर रहे हैं, वो फोकस नहीं है सुनने में। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये क्या, तो कहते हैं हमें तो आवाज ही नहीं आ रही थी। तो उन्होंने आज साइंस इस चीज को प्रूव कर रही है कि इतना ज्यादा औरत और मर्द की साइकिक में फर्क होता है कि अल्लाह ताला ने जो अहकामात दिए हैं वो उनकी नेचर के मुताबिक दिए हुए। आप अपने बेटों को नहीं आवाज नहीं देती रह जाती हैं औरतें, और बेटे सुनते ही नहीं है, और बेटी पहली आवाज में भागी आती है अगर बाप भी उसको बुला ले, फर्क है ना। तो औरत और मर्द के अंदर अल्लाह सुभान तआला ने जो सिस्टम रखा है उसके अंदर ये फर्क है। इसलिए इन सारी चीजों को बुनियाद बनाकर फिरकेबाजी, मसलक, कीचड़ उछालना, और अल्लाह माफ करे, मैं सोचती हूँ कि बाद लोग जो अल्लाह का काम कर रहे होते हैं, हमारी तो कोई इतनी हैसियत नहीं है, हम अपनी बात सिंपल आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन आज कई ऐसे लोग हैं कि जो दीन का काम कर रहे हैं और लोग उन पर कीचड़ उछाल रहे हैं और उनको फतवे दे रहे हैं। मैं सोचती हूँ खामोशी रह जाए, दुआ ही कर दें। अगर बिलफर्ज आपको लगता है कि ये अमल ठीक नहीं है किसी सिस्टर का, तो आप उसके लिए दुआ कर दें कि अल्लाह ताला इनके अमलों को जाया ना करना और तो इनके लिए अच्छा कर। ये तो कोई इस्लाम नहीं है ना कि आप किसी की नेकी को जाया कर दें। आज तक कभी हम फिल्म इंडस्ट्री में जाके तो ये इशू नहीं उठा सके, कमर्शियल्स में जाके नहीं उठा सके कि यहाँ से औरतों को बंद करें। आज भी एक टीवी चैनल है, मैं जानती हूँ, अभी तक मेरा गुमान ये है कि उस पर औरत नहीं आती पीस टीवी पे, औरतें ये तो चल ही रहे ना। अगर ये सोचें कि भाई औरत को निकालना है, तो फिर तो बल्कि अच्छी बात है कि औरत को टीवी से, चैनल्स में, उसकी बेहूदगी, उसके सारी चीज़ों से हटाइए ना। तो अच्छी नीयत के साथ गलत काम भी ठीक नहीं होता और इसका ऑपोजिट भी ठीक नहीं होता। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमें इन अहकामात पे अपनी हैसियत से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। ये तो भी पहली हिदायत थी, पांच हिदायतें हम पढ़ेंगे इन आयतों में, औरतों को जो अल्लाह ताला ने दी हैं।